एहेस्केल अध्याय 14, एहेस्केल अध्याय 14 पद 1 से लेकर 3 तक। फिर इसराइल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? मैं उनसे बात क्यों करूं? मैं उनके साथ सौदा क्यों करूं? ये जो तेरे सामने भावी पूछने बैठे हैं, इनके मन में तो मूर्तियां बसी हुई है। ये मन ही है जो परमेश्वर से दूर होता है या उसकी ओर फिरता है। रोमियो अध्याय 10 पद 9। अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। नीतिवचन अध्याय 4 पद 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 15 पद 19, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये लोग एहेस्केल से भावी पूछने गए थे, अतः परमेश्वर कहता है कि लोग मूर्तियों की स्थापना घरों में करते हैं, जो बुरा है, परंतु इन्होंने तो अपने मन में मूर्तियां बसा रखी है। ये तो और भी बुरा है, क्योंकि वे अपने आप ही को धोखा देते हैं कि उनके घर में कोई मूर्ति नहीं है, परंतु सत्य तो यह है कि वे मूर्तियों को मन में बसाए घूमते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात करना नहीं चाहता। एहेस्केल अध्याय 14 पद 4 और 5। सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यत वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे तो मेरे अजनबी हैं, क्योंकि उनका स्वामी कोई मूर्ति, कोई सिद्धांत या कोई धारणा है, क्योंकि वही उनको जीवन को नियंत्रित करती या करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है। एहेस्केल अध्याय 14 पद 6 से लेकर 8 तक। सो इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इसराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखें और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यत वक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड दूंगा, मैं उसे अपनी प्रजा में से अलग कर दूंगा। ऐसा खतरनाक काम मत करना कि मेरे सामने मन में मूर्ति बसाकर आ जाओ। हनन्या और सफीरा ने यही किया था। उनके मन में पहली मूर्ति तो धन की देवी की थी और दूसरी मूर्ति कलीसिया में दानदाता होने की प्रतिष्ठा। ओ, कैसे महान लोग हैं, अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए। जरूरी नहीं था कि वे अपनी संपदा बेचें और यदि बेचते भी है तो प्रभु के नाम पर देते। प्रभु को तो उसकी आवश्यकता नहीं थी, वे धोखा कर रहे थे, एक दिखावा कर रहे थे। पत्रस ने उनसे कहा कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का विचार मन में क्यों आने दिया कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। उनका झूठ मनुष्य से नहीं परमेश्वर से था, वे तुरंत मर गए। मैं उन्हें अपनी प्रजा से नाश करूंगा। धन्यवाद दो कि परमेश्वर हम पर इतना कठोर नहीं है, अन्यथा हमारी कलीसिया की सदस्यता बहुत कम होती। परमेश्वर का हाथ भारी होता है। एहेस्केल अध्याय 14 पद 9 से लेकर 11 तक। और यदि भविष्यत वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यत वक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इसराइल में से नाश करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यत वक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा वैसा ही भविष्यत वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इसराइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखिए परमेश्वर कितनी लालसा रखता है कि वो उनका परमेश्वर ठहरे और वे उसकी प्रजा। परमेश्वर चाहता है कि वे पवित्रता और धार्मिकता में चले और अपराधों से बचे रहे। एहेस्केल अध्याय 14 पद 12 से लेकर 14 तक। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूंगा, तब चाहे उसमें नू, दानियल और आयुब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे धर्म के द्वारा केवल अपने प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। दूसरे शब्दों में, मैं उन्हें किसी धर्मी जन के कारण क्षमा नहीं करूंगा, वे केवल अपना प्राण ही बचा पाएंगे। नूह के समय में परमेश्वर ने पापियों का नाश किया था, परंतु नूह को बचा लिया था। दानियल अभी जीवित था और वही था तथा नबूकदनेस्सर के दरबारियों में से एक था, परंतु उसकी प्रतिष्ठा एक आत्मिक जन तथा आत्मिक आदर्श अगवे किसी थी। ये उसी समय प्रमाणित हो गया था जब उसने बंदुआई में राजा का अशुद्ध भोजन खाने से मना कर दिया था और शाकाहारी भोजन का निवेदन किया था, क्योंकि उनका मांस एक तो कोशर नियम यहूदी खान पान नियम के अनुसार काटा नहीं जाता था, दूसरा वो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ होता था। उनके पहरेदार ने आपत्ति व्यक्त की कि शाकाहारी भोजन से वे सेहतमंद नहीं होंगे और राजा उसका सिर कटवा देगा। दानियल ने कहा कि वो 10 दिन तक रुक जाए और तब यदि उनका स्वास्थ्य ठीक ना दिखाई दे तो वे मांस खाएंगे। 10 दिन पश्चात दानियल और उसके साथी अन्यों के कहीं अधिक हष्टपुष्ट दिखाई दिए। दूसरा कारण था उसका वो अर्थानुवाद जो उसने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का किया था। इस प्रकार वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था और इसी कारण उसका नाम नू और आयुब के साथ जोड़ा गया। वो अभी युवा ही था, परंतु वो एक धर्मी पुरुष ठहरा और एक आदर्श बन गया। एहेस्केल अध्याय 14 पद 15 और 16। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर जा ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। वे स्वयं ही बचेंगे, उनका परिवार नहीं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। परमेश्वर के नाती पोते नहीं होते हैं, केवल पुत्र होते हैं। आपके माता पिता या परिवार के कारण आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं। नूह धर्मी जन था, परंतु वो समाज को बचा नहीं पाया, केवल उसके पुत्र और उनकी पत्नियां नाव में थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर कह रहा है, जब वो पृथ्वी का न्याय करेगा तब दुष्ट जंतु आएंगे अर्थात महाक्लेश, परंतु धर्मी जन अपने आप को वैसे ही बचा पाएगा। दूसरे शब्दों में, जैसे कलीसिया बचा ली जाएगी। जो वचन के अतिरिक्त कुछ और कहेगा वो परमेश्वर की शिक्षाओं का त्याग करेगा। एहेस्केल अध्याय 14 पद 17 से लेकर 23 तक। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो तो भी प्रभु यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जल जलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह दानियल और आयुब भी उसमें हो तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वो बिना कारण नहीं किया, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। शीघ्र ही यरूशलेम से बंदी आएंगे और बचकर भागे हुए लोग तुम्हें वृत्तांत सुनाएंगे, और तुम देखोगे तब जान लोगे कि मैं न्याय करने में धर्मी था, क्योंकि वे तुम्हें वहां हो रहे कुकर्मों का समाचार देंगे।